मित्र, आइए आज चर्चा करते हैं पान की। आप कहेंगे पान की बातें, मैं कहूंगी जी बिल्कुल। आप तो जानते ही हैं कि भारत में कई प्रकार के पान मिलते हैं। मगई जोड़ी है, कलकत्ता का पान है, पूना मसाला पान है, और न जाने कितने प्रकार के पान होते हैं। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अंशुमन शुक्ल के साथ, जो कि हमें बनारस के पान की खासियत बताएंगे। तो नमस्कार अंशुमन जी।
जी नमस्कार।
ये बताइए कि पान की परंपरा और खास करके बनारस पान की क्या विशेषता है।
बनारस का जो मगही है वो अपने आप में अद्भुत है। वो ऐसा पत्ता है कि जिसको पकाया जाता है बालू के अंदर, ऐसा पान वाले बताते हैं। और बालू के अंदर पकाने के बाद मगही का अगर पूरा पत्ता फर्श पर गिर जाता है तो टुकड़ों में बिखर जाता है। मगही एक ऐसा अकेला पान है जिसको अगर आप मुंह में रख लीजिए तो मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद घुल जाता है मुंह में। इसलिए बनारस और मगही एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा वहां पर सांची, देसी, जगन्नाथी, बनारसी, ये तमाम तरीके के पान हैं। और मजे की बात यह है कि बनारस के आसपास पान की खेती नहीं होती।
अच्छा।
ये पान या तो बिहार से आता है, या झारखंड से आता है, या छत्तीसगढ़ से आता है। पान को की खेती की अगर आप बात करिए या पान की को उगाने की बात करिए तो पान बड़ा पर्दा नशीन सा एक पत्ता है जिसको चारों तरफ से ढक कर तब उसको उगाया जाता है। सिर्फ ये कि उसको धूप न लगे, उसको बहुत तेज हवा न लगे, उसको तेज ठंड न लगे, नहीं तो वो जरा से मौसम के बदलाव में कुम्हला जाता है। तो पान इतना ज्यादा कोमल है। और बनारस की अगर आप बात करिए तो बनारस में जैसे आप बनारस के लिए एक लोकोक्ति है कि राण साण सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे तो सेवे काशी, इसमें एक चीज की कमी खलती है, वो है पान। क्योंकि बनारस में हर दो कदम पर पान की गुमटी, पान का ठेला या पान की दुकान आपको दिख जाएगी। और बनारस की सुबह, बनारस की शाम, बनारस का स्नान, बनारस का धर्म, सब पान जुड़ा हुआ है। और सिर्फ बनारस की ही बात अगर करिए या बनारस में पान की ही बात करिए तो बनारस में पान का इतिहास, जो बनारस में सबके जानकार हैं वो कहते हैं कि लगभग 3000 साल पुराना है। लेकिन शेरशाह सूरी ने जब ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई जिसको जीटी रोड कहते हैं आज के समय में, तो तब वो पान की उपलब्धता ज्यादा सुगम हो गई क्योंकि जगह जगह से पान आने लगा। पान को देखिए तो पान जैसे जैसे पूरब की तरफ आप बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे हिंदुस्तान में अगर आप पूर्वी कोने की तरफ बढ़िएगा तो पान आपको ज्यादा चलन में मिलेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश से चलते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पान का उतना चलन नहीं मिलेगा। जैसे ही आप मध्य उत्तर प्रदेश खासतौर से बुंदेलखंड के इलाके को से होते हुए इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस, गोरखपुर, फिर इसके बाद आप चले आइए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आप पूरब की तरफ जितना बढ़ते जाइएगा उतना ही आपको पान मिलता जाएगा। उसके पीछे पान और धान, ये दो ऐसी चीजें हैं जो जहां पर मौसम मुफीद होगा वहीं होंगी, जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहीं होंगी, खुश्क मौसम में पान नहीं होता है।
तो पान काफी नाजुक मिजाज पत्ता है।
हाँ, नाजुक मिजाज भी है और तुनक मिजाज भी है।
अच्छा।
पान के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि पान एक औषधि है। मतलब पान की को खाने की आवश्यकता के बारे में अगर आप सोचिए, एक ऐसा पत्ता इसको खाकर आदमी मतलब उसको औषधीय गुण उसके कैसे परखे, तो उसके औषधीय गुण परखने के लिए उसको पहले उन्होंने खाया, खाने पर उसके होंठ में जब उसके की लालिमा को देखी लोगों ने, तो लालिमा देखने के बाद पान को औषधीय गुण से पहले श्रृंगार का रूप दिया गया। अगर आप मधुबनी पेंटिंग की तरफ जाकर देखें, बिहार में मधुबनी पेंटिंग में देखें तो मधुबनी पेंटिंग में खासतौर से जो ब्राह्मण पेंटिंग होती है जिसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग भी तीन तरीके की होती है, ब्राह्मण पेंटिंग, कायस्थ पेंटिंग और हरिजन पेंटिंग, जिसकी अपनी अलग सीमाएं हैं, जिसमें कलर को लेकर भी एक अलग तरीके का बाइफर्केशन किया गया है। तो ब्राह्मण पेंटिंग में जो नेचुरल कलर्स हैं, जो औषधियों का इस्तेमाल करके जो रंग बनाए जाते हैं, उसमें पान भी एक रंग के तौर पर शुमार है। उसका जो कत्थे का एक अलग तरीके का रंग है, उसको खास तौर से वो जमीन, पहाड़ या इस तरीके के का जो नेचुरल टच है वो देने के लिए पान के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं।
और वैसे पान को धर्म से भी जोड़ा गया है, हमारी संस्कृति में भी पान का जुड़ाव है, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना।
देखिए, पान हमारी संस्कृति से इस तरह से रचा बसा है कि आप एक पूजा, कोई भी पूजा शुरू करिए, चाहे आप घर में सत्यनारायण की कथा ही करिए, उस कथा को अगर आप करेंगे तो जो उसके साथ आपको सामग्री दी जाती है कि ये चीजें लानी है भगवान के लिए, उसमें पान और सुपारी ये दोनों का होना अति आवश्यक है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद भगवान को हम पान और सुपारी ये कहकर समर्पित करते हैं कि तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि, तांबूल और पुंगी फल जो पान है और पान के साथ जो सुपारी है वो भी हम समर्पित करते हैं ईश्वर को। ये इस बात का संकेत है कि पान हमारा धर्म ही नहीं है। अच्छा, आप अगर आप जाते हैं कि आज हिंदू धर्म की मैथोलॉजी पर जाते हैं या हिंदू धर्म पर जाते हैं तो उसमें एक विवाद भी तमाम तरीके की चीजों पे हो सकता है मूर्तियों को लेकर, लेकिन हम जब पहले मूर्तियों के उपासक नहीं थे, जब हम सीधे शिव से मिलते थे, जब हम सीधे ब्रह्मा से मिलते थे, जब हम सीधे और देवी देवताओं से मिलते थे, तो अभिवादन के लिए एक दूसरे का जो जो पृथ्वी से देवलोक को कनेक्ट करने का एक अकेला जो औषधि थी वो मुझे लगता है तांबूल और पुंगी फल ही था। हम आदर के साथ अपने देवताओं को समर्पित कर सकते थे और उन्हें भी ये चीज पसंद थी, फल और पुष्प और सारी चीजों के साथ।
तो पान के जो औषधि गुण हैं उनके बारे में संक्षिप्त में जरा बता दीजिए हमें।
देखिए, पान की औषधि गुण के लिए ये कहा जाता है कि यदि आप पान खा रहे हैं जिसमें सिर्फ पान है, कत्था है, चूना है, पान है, तो उसको अगर आप खा रहे हैं तो उससे आपकी जो पाचन शक्ति है वो अच्छी होती है। तमाम तरीके का जो विकार है शारीरिक रूप से, जो जठराग्नि को लेकर शुरू होता है और जिसमें गैस और तमाम तरीके की व्याधाएं उत्पन्न होती हैं, आपके पेट से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को पान दूर करता है, लेकिन एक या दो पान खाने पर। ये उन लोगों पर अप्लाई नहीं होता जो दिन भर में 20 पान खाते हैं और उसके बाद इसमें औषधीय गुण तलाशते हैं।
और वैसे जख्मों पर, फोड़ी फुंसी पर भी कहते हैं पुराने जमाने में पान लगा दिया करते थे।
हाँ, खास तौर पर वो थोड़ा जो औंधे मुंह का होता है, जो यहाँ पर बोलचाल की भाषा में उत्तर प्रदेश में कहते हैं, उसको अगर पकाना है या जो थोड़ा जो जो काफी दिनों से लाल है और पक नहीं रहा है, तो पान को सेक कर, देशी घी या कड़ुए तेल में सेक कर उसको अगर आप लगा देते हैं उस पर, तो ये माना जाता है कि वो फोड़ा पक जाता है और फूट जाता है नेचुरल प्रोसेस से। पान की तासीर में ये गर्मी है, ऐसा औषधीय शास्त्र कहता है।
आपने पान के बारे में और खास तौर से बनारसी पान के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है। आगे चलकर विश्वास है कि आपके साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया।